श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मार्गदर्शक कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। श्रोता, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम परमेश्वर के अनुग्रह की अद्भुतता या विस्मयकारिता पर ध्यान दे रहे हैं। प्रेम जो ऊपर की ओर जाता है वो आराधना है। प्रेम जो चारों ओर जाता है वो स्नेह है। प्रेम जो नीचे की ओर आता है वो अनुग्रह है। आशा है कि आप अवश्य ही इन संदेशों के द्वारा लाभान्वित हो रहे हैं। तो आइए, संदेश की ओर ध्यान देने से पहले इस गीत को सुने और अपने मनों को तैयार करें।
Hello, listening friends.
नमस्कार श्रोता मित्रों.
We are delighted that you tuned in to listen to this broadcast.
हमें खुशी है कि आप इस प्रसारण में शामिल हुए हैं.
Last time we learned that God is eternal, but His grace is not.
पिछली बार हमने सीखा कि परमेश्वर अनंत है लेकिन उसका अनुग्रह नहीं.
That there is a time coming.
कि एक समय आ रहा है.
When the grace of God will be withdrawn.
जब परमेश्वर का अनुग्रह हटा लिया जाएगा.
There is a time that is coming.
एक समय आ रहा है.
When we will have to face God's judgment for our lives.
जब हमें अपने जीवनों के लिए परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा.
Therefore, we must receive God's grace while it can be found.
इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर लेना चाहिए जब तक ये उपलब्ध है.
In the last broadcast, we left off with Adam and Eve eating the fruit from the one and only forbidden tree.
पिछले प्रसारण में हमने आदम और हवा को अकेले उसी एकमात्र वर्जित वृक्ष से फल खाते हुए छोड़ा था.
Everything in the world was theirs except the fruit from one tree.
उस एक वृक्ष के फल के सिवाय संसार में सब कुछ उनका था.
So what did they do?
तो उन्होंने क्या किया?
They ate from that tree.
उन्होंने उस वृक्ष से खा लिया.
And they started the cycle of temptation that each of us face every single day.
और उन्होंने परीक्षाओं के उस चक्र को शुरू कर दिया जिसका सामना हम में से प्रत्येक हर दिन करता है.
But we also learned that the amazing grace of God can release us from these temptations.
लेकिन हमने ये भी सीखा कि परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह हमें इन परीक्षाओं से छुटकारा दे सकता है.
First, let us look at how some people rationalize their thoughts.
सबसे पहले आइए देखें कि कैसे कुछ लोग अपने विचारों को सही ठहराते हैं.
The first step,
पहला कदम है,
God is not good. If He was good, He wouldn't tell me not to do something that I want to do.
कि परमेश्वर भला नहीं है, यदि वो भला होता तो वो मुझे वो करने से ना रोकता जो मैं करना चाहता हूँ.
God must not want me to be happy.
अवश्य ही परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं खुश रहूं.
This leads to the second step.
ये विचार दूसरे कदम तक ले जाता है.
Satan told them that God lies.
शैतान ने उनसे कहा कि परमेश्वर झूठ बोलता है.
And Satan tells our generation that the Bible is not true.
और शैतान हमारी पीढ़ी से कहता है कि बाइबल सत्य नहीं है.
Satan tells our generation that unless I can be free to do whatever I want, I cannot be truly fulfilled in life.
शैतान हमारी पीढ़ी को बताता है कि जब तक मैं अपनी मर्जी करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूँ तब तक मैं अपने जीवन में पूरा नहीं हूँ.
Adam and Eve's temptation are precisely our temptations today.
आदम और हवा की परीक्षा यथार्थ आज हमारी परीक्षाएं हैं.
Their disobedience and fall is a true picture of the state of all human beings.
उनकी अनाज्ञाकारिता और गिरावट संपूर्ण मानवता के स्तर की सच्ची तस्वीर है.
But here's the truth.
लेकिन सत्य ये है.
Whether we like it or not.
चाहे हम इसे पसंद करें या ना करें.
Whether we acknowledge it or not.
चाहे हम इसे स्वीकार करें या ना करें.
This is God's universe and not ours.
ये संपूर्ण सृष्टि परमेश्वर की है ना कि हमारी.
And God rules in His universe any way that He wants to rule in His universe.
और परमेश्वर जैसे चाहे अपनी सृष्टि पर राज करता है.
God's justice requires that sin must be judged.
परमेश्वर के न्याय की आवश्यकता है कि पाप का न्याय हो.
God's justice requires that sin must be punished.
पाप को दंड परमेश्वर के न्याय की आवश्यकता है.
If you really want to understand how that works,
यदि आप सच में समझना चाहते हैं कि ये कैसे होता है,
refuse to work on the job and see what happens.
तो अपनी नौकरी पर जाइए और काम ना कीजिए और फिर देखिए क्या होता है.
You will get fired. And no amount of excuses will help you.
आपको निकाल दिया जाएगा और कितने भी बहाने बनाइए कोई भी काम में नहीं आएगा.
God said to Adam and Eve that refusal to do what God said to do would lead to death.
परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि परमेश्वर का कहा ना मानना उनको मृत्यु तक ले जाएगा.
And no amount of excuses would help.
और कितने भी बहाने हों कोई काम में ना आएगा.
But Both Adam and Eve made excuses.
लेकिन आदम और हवा दोनों ने बहाने बनाए.
Let's turn again to the scripture, Genesis chapter 3, beginning verse 8.
आइए फिर से वचन पर चलें. उत्पत्ति 3 अध्याय 8 पद से शुरू करते हैं.
श्रोताओं, हम पवित्र शास्त्र में से पढ़ें. उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 8 से लेकर 13 पद. उत्पत्ति की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 8 से लेकर 13 पद. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया तब मैंने खाया।
My listening friends, do you know what both Adam and Eve's excuse really was?
मेरे श्रोता मित्रों, क्या आप जानते हैं कि आदम और हवा का बहाना असल में क्या था?
Do you know whom they were really blaming for their rebellion?
क्या आप जानते हैं कि असल में वो अपने विद्रोह का दोष किस पर लगा रहे थे?
Ultimately, they were blaming God for their sin and rebellion and disobedience.
असल में वो अपने पाप, विद्रोह और अनाज्ञाकारिता का दोष परमेश्वर को दे रहे थे।
Adam said, "The woman you gave me made me do it."
आदम ने कहा, वो स्त्री जो तूने मुझे दी, उसी ने मुझसे ये करवाया।
And Eve said, "The creature you created made me do it."
और स्त्री ने कहा, वो जीव जो तूने रचा, उसने मुझसे ये करवाया।
And we have been making excuses ever since.
और हम तभी से बहाने बनाते आ रहे हैं।
I am sure that some of you are asking this question by now.
मुझे निश्चय है कि अब तक आप में से कुछ ये प्रश्न पूछ रहे होंगे।
Where is that grace that you're supposed to be talking about?
कहाँ है वो अनुग्रह जिसके बारे में तुम बात करने वाले थे?
What I'm doing is putting up the screen first in order to project the picture of grace.
सबसे पहले मैं वो पर्दा लगा रहा हूँ जिस पर अनुग्रह की तस्वीर दिखा सकूँ।
For it is only in the context of sin that grace can be truly appreciated.
क्योंकि केवल पाप के प्रसंग में से ही असल में अनुग्रह की सराहना की जा सकती है।
And that is why Satan's modern day deception is to blur sin and therefore the need for grace.
और इसी कारण शैतान का आधुनिक छल है कि पाप को धुंधला कर दे और इसके लिए अनुग्रह की आवश्यकता को भी।
Here is how Satan works.
शैतान इस प्रकार से काम करता है।
If everyone says sin is not really a sin, it's just a mistake, and who doesn't make a mistake?
यदि हर कोई कहता है पाप असल में पाप नहीं है, ये केवल एक गलती है, और कौन है जो गलती नहीं करता?
If he can deceive people into believing that God is only merciful and he will go easy on sin,
यदि वो छल से लोगों को ये विश्वास दिला सकता है कि परमेश्वर केवल अनुग्रह से भरपूर है और वो पाप की परवाह नहीं करता,
then there is no need for grace.
तो फिर अनुग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है।
And if there is no need for grace,
और यदि अनुग्रह की कोई आवश्यकता नहीं है,
when we get into trouble, we try to make an excuse.
तो जब हम समस्या में पड़ते हैं तो हम बहाना बनाने की कोशिश करते हैं।
But these excuses won't help you.
लेकिन ये बहाने आपकी सहायता नहीं करेंगे।
Well, first let's look at God's grace in the garden.
खैर आइए पहले बाग में परमेश्वर के अनुग्रह को देखें।
And the first thing you notice that Adam and Eve did not immediately die.
और पहली बात जो आप देखते हैं वो है कि आदम और हवा तुरंत ही नहीं मरे।
They did die spiritually.
वो आत्मिक रूप से मर गए।
And that's why they were hiding from God.
और इसीलिए वो परमेश्वर से छिप रहे थे।
God said that the day you eat from the tree is the day you will die.
परमेश्वर ने कहा था कि जिस दिन तुम इस वृक्ष से खाओगे उसी दिन तुम मर जाओगे।
That is justice.
ये न्याय है।
If you break the law, then you'll go to prison.
यदि आप कानून तोड़ेंगे तो आप जेल जाएंगे।
That's justice.
ये न्याय है।
But grace comes in and says, I will give you time to repent.
लेकिन अनुग्रह आकर कहता है मैं तुम्हें पश्चाताप का समय देता हूँ।
Now the God of grace will do even more than that.
अब अनुग्रह का परमेश्वर इससे भी अधिक करेगा।
He's going to give them time to believe on the Savior that is coming to the world.
वो उन्हें उस उद्धारकर्ता पर विश्वास करने का समय देता है जो संसार में आने वाला है।
The reason that you are alive right now is so that God might give you an opportunity to repent and believe in the Lord Jesus Christ.
इस समय आप जीवित हैं क्योंकि शायद परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने और पश्चाताप करने का अवसर दे रहा है।
Secondly,
दूसरा,
the God of grace promised a redeemer to undo Satan's deception.
अनुग्रह के परमेश्वर ने शैतान के छल को समाप्त करने के लिए एक छुटकारा देने वाले का वादा किया था।
Look at Genesis 3:15.
उत्पत्ति 3 अध्याय के 15 पद को देखें।
I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel.
और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा।
Genesis 3:15 is the first announcement of the gospel of Jesus Christ in the whole of the Bible.
उत्पत्ति 3 अध्याय का 15 पद संपूर्ण बाइबल में यीशु मसीह के सुसमाचार की पहली घोषणा है।
Adam and Eve at the time did not comprehend all that God was telling them.
उस समय आदम और हवा ने परमेश्वर की बात को नहीं समझा।
But they understood enough to know that a redeemer was coming.
लेकिन यहां तक समझ गए कि एक छुटकारा देने वाला आ रहा है।
In fact, they thought that their firstborn was given to them to be that redeemer.
बल्कि उन्होंने सोचा कि उनका पहलौठा ही उन्हें छुटकारा देने वाले के रूप में दिया गया है।
And that is why they called him Cain.
और इसीलिए उन्होंने उसे कैन पुकारा।
Which means here he is.
जिसका अर्थ है यही है वो।
To their utter devastation, Cain turned out to be the first murderer.
उनके पूर्ण नाश के लिए कैन पहला हत्यारा बना।
It took thousands of years before the Redeemer was announced to the Virgin Mary in Nazareth.
हजारों वर्षों बाद छुटकारा देने वाले की घोषणा नासरत में कुंवारी मरियम को की गई।
The angel Gabriel told Mary and Joseph to name him Jesus.
जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम और यूसुफ से उसका नाम यीशु रखने को कहा।
Because he will save his people from their sins.
क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा।
And that is why Adam named his wife Eve.
और इसीलिए आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा।
Which means life or giver of life.
जिसका अर्थ है जीवन या जीवन देने वाली।
Why?
क्यों?
Because of the promise of God that he will send a life-giving savior through her.
परमेश्वर के उस वादे के कारण कि वो उसके द्वारा जीवन देने वाला मुक्तिदाता भेजेगा।
This was Adam's way of responding to the grace of God.
परमेश्वर के अनुग्रह को प्रत्युत्तर देने का ये आदम का तरीका था।
It is as if Adam is saying,
जैसे कि आदम कह रहा है,
I did not believe your word then, but I do believe your word now.
तब मैंने तेरे वचन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अब करता हूँ।
It was the God of grace who did not let them die as they should have.
ये अनुग्रह का ही परमेश्वर था जिसने उन्हें मरने नहीं दिया जबकि वो मृत्यु के हकदार थे।
It was the God of grace that gave them promise of a redeemer.
ये अनुग्रह का परमेश्वर ही था जिसने उनसे उद्धारकर्ता का वादा किया था।
And it was the God of grace who saved our first parents.
और ये अनुग्रह का ही परमेश्वर था जिसने हमारे पहले माता-पिता को बचाया।
Let's look at it in Genesis 3:21.
आइए उत्पत्ति 3 अध्याय के 21 पद में इसे देखें।
The Lord God made garments of skin for Adam and his wife Eve and clothed them.
प्रभु परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी हवा के लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाए।
We are told after that Adam and Eve believed God.
हमें बताया जाता है कि इसके बाद आदम और हवा ने परमेश्वर पर विश्वास किया।
And we are told after Adam and Eve believed God,
और हमें बताया जाता है कि आदम और हवा के परमेश्वर पर विश्वास करने के बाद,
the Lord made garments of skin for them and clothed them.
प्रभु ने उनके लिए चमड़े के वस्त्र बनाकर उन्हें पहनाए।
Now to do that, Adam and Eve had to witness the first slaying of an innocent animal.
अब ये करने के लिए आदम और हवा को एक निर्दोष जानवर के पहले वध का गवाह बनना था।
It was the first animal sacrifice in the history of the universe.
सृष्टि के इतिहास में ये पहली पशु बलि थी।
The first lesson in grace was that an innocent dies for the guilty.
अनुग्रह में पहला पाठ ये था कि एक निर्दोष दोषी के लिए मरता है।
This is the first biblical glimmer of understanding that the perfect, holy, sinless, innocent Son of God.
ये उस अर्थ की पहली बाइबल आधारित झलक थी कि परमेश्वर का सिद्ध पवित्र पाप रहित पुत्र
will die for the guilty sinners who are all of the children of Adam and Eve.
उन दोषी पापियों के लिए मरेगा जो सब आदम और हवा की संतान हैं.
It is the garment of the righteousness of the Lord Jesus Christ that will make us acceptable to the Father.
ये प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता का वस्त्र ही है जो हमें पिता के सामने स्वीकार्य बनाएगा.
Of course, this must have been astonishing to Adam and Eve.
निश्चय ही ये आदम और हवा के लिए आश्चर्यजनक रहा होगा.
But the grace of God is always astonishing to those who experience it.
लेकिन परमेश्वर की दया हमेशा ही उनके लिए आश्चर्यजनक है जो इसका अनुभव करते हैं.
Adam and Eve deserved to die.
आदम और हवा मृत्यु के हकदार थे.
But instead they found life.
लेकिन इसके बजाय उन्होंने जीवन पाया.
What about you, my friend?
आपके बारे में क्या है मेरे मित्र?
Have you experienced the grace of God?
क्या आपने परमेश्वर के अनुग्रह का अनुभव किया है?
Have you confessed your sins?
क्या आपने अपने पापों को मान लिया है?
Have you accepted Jesus' sacrifice on the cross as a payment for your sin?
क्या आपने क्रूस पर यीशु के बलिदान को आपके पाप की कीमत के रूप में स्वीकार कर लिया है?
You might ask, how can a sinless man die for me?
शायद आप पूछेंगे, कैसे एक पाप रहित मनुष्य मेरे लिए मर सकता है?
That is impossible.
ये असंभव है.
That is why it is called grace.
इसीलिए इसे अनुग्रह कहा जाता है.
You cannot pay for it.
आप इसकी कीमत नहीं दे सकते.
You cannot achieve it on your own.
आप अपने आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते.
But God is offering it to you.
लेकिन परमेश्वर इसे आपको प्रस्तुत कर रहा है.
Will you come to him?
क्या आप उसके पास आएंगे?
And say, Lord, I thankfully accept your grace.
और कहेंगे, प्रभु, मैं धन्यवाद सहित तेरा अनुग्रह स्वीकार करता हूँ.
I repent of my sin.
मैं अपने पाप का पश्चाताप करता हूँ.
I receive your forgiveness.
मैं आपकी क्षमा को प्राप्त करता हूँ.
If you have prayed this prayer, please write to us and tell us and let us know.
यदि आपने ये प्रार्थना की है तो कृपया हमें लिखिए और बताइए.
Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
दोबारा मिलने तक मैं आपके लिए परमेश्वर की उत्तम आशीष की कामना करता हूँ.
आशा है श्रोता कि आज के संदेश से आपको आशीष मिली है। यदि आप जीवित परमेश्वर के विषय में या उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में अधिक जानना चाहते हैं तो तुरंत आज ही इस पते पर हमें पत्र लिखें। और हाँ, अपनी प्रार्थना विनतियां लिखना ना भूलें। यदि आप आपके विश्वास में 7 साहसिक पग ये पुस्तिका हमसे प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर हमसे संपर्क करें। हमारा पता है कार्यक्रम मार्गदर्शक विश्ववाणी पोस्ट बॉक्स नंबर 731 फरीदाबाद 7 हरियाणा। पता अंग्रेजी में सुन लीजिए, कार्यक्रम मार्गदर्शक विश्ववाणी पोस्ट बॉक्स नंबर 731 फरीदाबाद 7 हरियाणा। तो श्रोता, अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार।